मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। फिलहाल हम लोग अपने वीक को, अब आप कह लीजिए फोर्टनाइट में तब्दील कर चुके हैं, और फोर्टनाइट आगे जाकर के किस नाइट में जाएगा मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों की उत्सुकता और ज़रूरत को देखते हुए मैंने अब ये मन बना लिया है कि जो हमारा प्री एग्जामिनेशन होता है उसमें कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, इन उपायों पर विस्तार के साथ बातें करूँ, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जरा एक घटना मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आज 22 अप्रैल है और आप जानते होंगे कि जो 22 अप्रैल का दिन है वह विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 3-4 साल पहले इसी बीच में विश्व पृथ्वी दिवस पर बाकायदे प्री एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस साल कितना ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ऐसी बातों का ज्ञान हमें रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह का ज्ञान ही हमारी जो अनुमान लगाने की शक्ति है, क्षमता है, उसको बढ़ाते हैं। तो थोड़ी सी बात मैं आपको पृथ्वी दिवस के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो पृथ्वी दिवस था वह 1970 में मनाया गया था, और याद रखिए कि इसका जो उद्देश्य है वो है कि पृथ्वी, या कह लीजिए कि जो पूरी की पूरी हमारा जो पूरा का पूरा पर्यावरण है, उसकी रक्षा के लिए लोगों को तैयार करना, सपोर्ट हासिल करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। आप देख पाएंगे कि पृथ्वी दिवस जब मनाया जाता है तो होता यह है कि पूरी दुनिया में से एक अर्ज अनुरोध किया जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए बिजली बंद कर दीजिए, तो पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। तो इसको लेकर के कुछ लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि शायद बिजली की बचत के लिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और प्री एग्जामिनेशन में इसी तरह से आपको फंसाया भी जाता है। लेकिन नहीं, इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे अंदर, दुनिया के अंदर एक चेतना पैदा करें, ताकि वो पर्यावरण का जो संरक्षण होना चाहिए, उसकी जो रक्षा होनी चाहिए, उसके लिए आगे आ सके। दोस्तों, 1970 में ये पहली बार मनाया गया था, और खासकर 22 अप्रैल का दिन इसलिए रखा गया है कि इसी दिन ये माना जाता है कि खासकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए, खासकर इसी दिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो मूवमेंट हुआ था वह हुआ था 22 अप्रैल। बस इतनी सी बात ही आपके लिए पर्याप्त होगी। फ्रेंड्स, आइए अब मुख्य विषय पर आते हैं, और आज मैं इस बिंदु पर बात करने जा रहा हूं कि जो अनुमान लगाने की क्षमता है, क्या वह प्रकृति प्रदत्त क्षमता है, यानी कि भगवान हमें यूं ही देता है, या हमें इसे अवेल करना पड़ता है, यानी कि एक्वायर करना पड़ता है। ठीक है, अनुमान लगाने की क्षमता हम में होनी चाहिए, मान लीजिए कि आप इस बात पर विश्वास करते हैं, तो दूसरा प्रश्न उठेगा कि अब ये क्षमता हमारे अंदर आएगी कहां से। क्या हम सीधे भाग्य के भरोसे चल करके ए बी सी डी चारों में से किसी भी एक में निशान लगा दें, या क्या हो सकता है कि ऐसा कि हमें, चूंकि रिमेनिंग जो भी 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उन 3 क्वेश्चंस के लिए हम एक सोच लें अपने दिमाग में कि ए में लगाना है, या बी में लगाना है, या सी में लगाना है, या डी में लगाना है, और फिर डिसाइड करके, और जितने भी 30 क्वेश्चंस हैं उन सभी में से एक में निशान लगाते चले जाएं कि डी 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 डी। क्या इससे हमारी बात बन जाएगी, या क्या हम इसके लिए परीक्षा से पहले दिन जाएं मंदिर और वहां भगवान से बोल करके आए कि मेरा पेपर अच्छा बन जाए, सेलेक्ट करा देना, तो फिर मैं तुमको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। व्हाट टू डू, कैसे किया जा सकता है, आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने बात की शुरुआत करूं, एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछली बार मैंने आपसे अनुमान लगाने की क्षमता कि जो फिलॉसफी होती है जिंदगी में, उसके बारे में कुछ बातें की थी। मैं केवल एक प्रश्न का उत्तर आप सबसे जानना चाहता हूं, और ये मैं अपने लिए जानना चाहता हूं, वो ये, इससे पहले भी आपको मालूम था कि नहीं नहीं कुछ क्वेश्चंस तो हमें अपने ढंग से सॉल्व करने चाहिए, अनुमान पर आधारित होने चाहिए, तभी हम सेलेक्ट हो सकते हैं, ये बात आपको मालूम थी, मैंने कोई आपको नई बात नहीं बताई, ये मैं जानता हूं। लेकिन जब आपको मैंने अनुमान लगाने की क्षमता का जीवन में क्या महत्व है और किस तरह से डेली लाइफ में उसका इतना बड़ा रोल होता है, जब इसके बारे में बताया, तब अब आपकी सोच में क्या परिवर्तन हुआ, बस मुझे केवल ये जानना है। क्या आप पहले ही जैसे हैं, या सोच में कुछ परिवर्तन हुआ है, थोड़े से गंभीर हो गए हैं, या अब आप इसे प्री में ज्यादा गंभीरता के साथ सीरियसली अप्लाई करने के लिए तैयार अपने आप को कर रहे हैं? क्या आप परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? प्लीज आज ही मुझे मेल करके बताएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूं, अपने लिए इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं ज्यादा अच्छे से अच्छा आपका मार्गदर्शन कर सकूं। मैं हवा में बात नहीं करना चाहता, मैं इस भ्रम में भी नहीं रहता, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं इस भ्रम में भी नहीं रहता कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूं वही आपके लिए उपयोगी होगा। नॉट एट ऑल। रास्ता दिखाने का काम आपको ही करना है। हां, फिर मैं आपकी उंगली पकड़ करके आपको आगे ले जाऊंगा। दोस्तों, याद रखिए कि जो हमारी क्षमता पैदा होती है अनुमान लगाने की, वो हवा में पैदा नहीं होती, वो भाग्य का भी लेख नहीं है, वो जन्म से भी हमें नहीं मिलता है। एक लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए और वो ये लाइन है कि यह हमें एक्वायर करना पड़ता है, हमें हासिल करना पड़ता है, कोई देता नहीं है। वैसे अगर हम देने की बात करें तो वो चारों तरफ वो घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं आपको प्री एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेटेस्ट, उनके उदाहरण के जरिए आपको समझाऊंगा। हमारे चारों तरफ लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं और अलग अलग तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी जो घटना आपके साथ घटित हो रही है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के संदर्भ में, वो कौन सी घटना है? आप बताइए, जो सबसे बड़ी घटना घटित हो रही है वो कौन सी घटना है? अगर मान लीजिए कि प्री एग्जामिनेशन में ही मैं ये आपसे पूछूं तो क्या आप इसका तुरंत उत्तर दे सकेंगे? देने की कोशिश कीजिए। आपका उत्तर होना चाहिए कि मेरी स्टडी, जो सबसे बड़ी घटना घटित हो रही है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, वो ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, कितने कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने कितने राइटर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और दूसरों से मदद ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, वह सब कुछ जो आपको लगता है कि किया जाना चाहिए, यह सबसे बड़ी घटना घटित हो रही है। लेकिन याद रखिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन केवल आपके द्वारा घटित की जाने वाली इस एक घटना तक सीमित नहीं है। प्लीज एक्सटेंड योर थॉट्स, एक्सटेंड योर विजन। आप अपने विचारों को विस्तार दीजिए, अपने दृष्टि को बढ़ाइए। इसलिए मैंने कहा कि आपके चारों ओर घटनाएं घटित हो रही हैं। यदि आप उन घटनाओं के प्रति सजग हैं, तब ये मान करके चलिए कि आप हर समय सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, आपको लगातार उनके प्रति सजग होना पड़ेगा। ये जिनके प्रति सजग होना पड़ेगा उनकी लिस्ट क्या क्या हो सकती है बताना बहुत मुश्किल है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर वो लिस्ट बता दीजिए, तो मैं केवल एक ही लिस्ट बता सकता हूं, वह यह कि ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसकी आपको उपेक्षा करनी चाहिए। यानी कि जो कुछ भी आपके चारों ओर घटित हो रहा है, जिस रूप में भी घटित हो रहा है, चाहे वो शब्द के रूप में घटित हो रहा है, चाहे वो दृश्य के रूप में घटित हो रहा है, चाहे आप सुन रहे हैं ध्वनि के रूप में घटित हो रहा है, अखबार में पढ़ रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं तो आप चीजें देख रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके जो अनुमान लगाने की क्षमता है उसे मजबूत बनाती है और क्षमता यहीं से आती है। हालांकि मेरी बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं तो कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जो बड़े अजूबे किस्म की है, और अगर आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे तब तो आप लगातार तनाव में ही भरे रहेंगे, क्योंकि आप हर समय यही समझते रहेंगे कि भैया ये जो घटना है ये सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो घटना है ये सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप तनाव में मत आइएगा, मैं तो आपको तनाव मुक्त करने जा रहा हूं, तनाव में डालने नहीं जा रहा हूं। दोस्तों, केवल आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी है, बस केवल एक बात। अपने दिमाग को इसके लिए तैयार कर लीजिए कि आपके चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है व्यर्थ नहीं है, आपके लिए कम से कम उसकी उपयोगिता है। बस आप उसका अवलोकन करते रहिए। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको याद कर करके आप दिमाग में दोहराइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें अपनी डायरी में नोट कर दीजिए, नॉट एट ऑल, उसकी जरूरत ही नहीं है। कितना नोट करेंगे, कितना दोहराएंगे, पागल हो जाएंगे ऐसे करके। तो आप केवल उसके प्रति सजग रहिए, अवेयर रहिए, दैट्स ऑल, सफिशिएंट है ये। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा। मैंने आप आईएएस कैसे बनेंगे किताब में इस घटना की चर्चा भी की है कि जब मैं गांव में था, 18 साल में गांव में रहा, तो गांव का जीवन अलग तरीके का होता है। वहां मैं बादलों को देखा करता था और आपको ताज्जुब होगा कि बहुत कम उम्र में ही मैं बादलों को देख करके ये बता दिया करता था कि कितने घंटे बाद वर्षा होगी, कितनी देर तक वर्षा होगी, ज्यादा होगी कम होगी। और आप शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे घर में माँ बहनें और बुआ जो होती थी केवल यही नहीं पूछती थी कि आज हम गेहूं धो करके सुखा दें कि नहीं सुखा दें, कितनी देर में बारिश होगी, बल्कि गांव के लोग भी, किसान भी आकर के मुझसे पूछते थे कि वर्षा का क्या हाल होगा। मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, मुझे मेरे पास कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं था, मैं कोई ज्योतिष नहीं था, लेकिन बस केवल बादलों के कलर्स, हवाओं को देख करके एक ऐसा सेंस डेवलप हो गया था कि मैं बता सकता था। लेकिन अब मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा वो अभ्यास खत्म हो गया है, वो स्थान बदल चुका है, अब मैं कोई ऐसा अवलोकन नहीं कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि आपके चारों ओर जो भी घटित हो रहा है, मान करके चलिए कि वह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपकी मदद कर सकता है, कर सकता है, करेगा ही नहीं, कर सकता है। और ऐसा कैसे संभव है फ्रेंड्स, ये मैं आपको कल बताऊंगा बकायदे, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें ले लेकर के, ताकि आप विश्वास कर सकें। अब आपके सामने संकट यह होगा कि आप हो सकता है कि सोच रहे हों कि अब 2.5 महीने तो 2.5 महीने परीक्षा के बचे हुए हैं, तो अब हम क्या करें। अब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी भी आप कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं देखिए बहुत पहले आपसे कर चुका हूं, कह चुका हूं कि अभी मैं जो बात आपसे कर रहा हूं वो अभी के एग्जामिनेशन में कैसे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकें, केवल इसी को ध्यान में रख करके कर रहा हूं, वो मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट है। हाँ, आप टोटल तैयारी कैसे करेंगे वो एक अलग प्रश्न है, उसका एक अलग तरीका होगा, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं जो सजगता की बात कर रहा हूं उसे आप समझेंगे जब मैं बकायदे जो आपके प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें ले लेकर बताऊंगा तब। और मुझे लगा कि यदि मैं यह बात नहीं बताऊंगा तो आप मेरी आगे की बातों को नहीं समझ सकेंगे। दोस्तों, मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मैं आपकी अपेक्षा के अनुरूप उस रफ्तार से नहीं चल पा रहा हूं, लेकिन यह मेरी अपनी मजबूरी है क्योंकि मुझे उस रफ्तार से चलना नहीं आता। तो मुझे विश्वास है कि आप इसके लिए शायद मुझे थोड़ा सा मार्जिन देकर चलेंगे। तो आज के मुख्य विषय के बारे में दोस्तों बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: जय लक्ष्मी जपति, ज्योति केसरवानी, चंदन उत्तराखंड से, निधि अहलावत, अदिति वर्मा और साहिल गवई उमरेद नागपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।